My beloved brothers and sisters,
मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबको अपने प्यारे अपने प्यार और शुभकामना देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपसे बात करते हैं मेरे स्वर्ग पिता हमें मेरे विचार का मार्गदर्शन करेंगे और मेरे शब्दों को प्रेरणा देंगे। मैं उन शानदार संदेशों पर टिप्पणी करके बात शुरू करना चाहूँगा जो आज सुबह हमने एल्वर्ड और धर्मल ब्रिटेन के रजाधर के कल्याणकारी कार्यक्रम के विषय में हमने सुने हैं। जैसे कि बताया गया है, यह साल इस प्रेरित कारक में 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस महान प्रयास का समारंभ आरंभ करने के लिए कुछ व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने का मेरा सौभाग्य रहा है। ये मेरा प्रयास है कि ऐसे जिसने कई जीवनों को इन्हें 75 सालों में आशीषित किया और अभी भी कर रहा है। जैसे धर्माध्यक्ष बर्डन और बहन ऑलरेड दोनों ने बताया था, वार्ड के धर्माध्यक्ष को उनके वार्ड के सीमाओं के अंदर रहने वाले जरूरतमंदों की देखभाल करने की जिम्मेदारी आती है। मुझे भी ऐसा करने का सौभाग्य मिला था जब मैं उस सॉल्ट लेक सिटी के एक की अस्थित सदस्य के वार्ड में, जिसमें 84 विधवा थी, उसका एक धर्माध्यक्ष था। मैं उस समय गिरजे के जो कल्याणकारी कार्यक्रम के लिए कितना एहसान मंद था। मैं बताता हूँ कि जो चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट लैटर-डे सेंट्स का कल्याण कार्यक्रम है, उसे प्रेरित रूप से बनाया गया है। मेरे भाइयों बहनों, इस कॉन्फ्रेंस में मुझे अध्यक्ष बनाए हुए 3 साल हो गए। वो 3 साल बहुत रहे हैं। इन सालों में बहुत से हमें आशीर्वाद मिला है। मुझे कई तरह से आशीषों मिले हैं। मैंने समंदर को समुद्र पुनर्संबंधित किया है और आज मैं मंदिर के विषय में आपसे बात करना चाहूँगा। 1902 के अक्टूबर के जनरल सम्मेलन के दौरान लगभग 109 साल पहले गिरजाघर के अध्यक्ष जोसेफ स्मिथ ने अपने आरंभिक संबोधन में इस आशय के व्यक्त किया था कि एक दिन हम लोग ही सुविधाओं के लिए मंदिरों को विश्व के सभी विभिन्न संस्थानों में बनाएंगे जिनको यहाँ उनकी जरूरत होगी। 1830 के संगठन के बाद 1830 से 1980 तक 150 साल के दौरान कटलैन ओहायो नाबू इलिनॉय सहित 21 मंदिर बनाए गए थे। इसके विपरीत 1890 से अब तक 30 साल के दौरान के बारे में सोचो, यानी पिछले साल के अंत तक 115 मंदिर बनाए गए और समर्पित किए गए हैं 29 सालों में। कल घोषित किए गए 3 नए मंदिरों के साथ अब 26 अतिरिक्त मंदिर हैं जिन्हें निर्माणाधीन या पूर्व निर्माण निर्वस्था में है। मंदिरों की ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। में जिस लक्ष्य की आशा जोसेफ स्मिथ ने अपनी की था वो ये व्यवस्था बन रही है। हमें आशंका है कि मंदिर जहाँ तक संभव हो हमारे सदस्यों को के निकट हो। एक मंदिर जो वर्तमान रूप में निर्माण की स्थिति में है वो मानस ब्राजील में है। कई साल पहले मैंने उन 100 सदस्य के समूह के बारे में पढ़ा था जो अमेजन के वर्षावन के बीच में रहते थे। मानस से अपने निकटतम मंदिर साओ पाउलो ब्राजील लगभग जो 6,500 किलोमीटर दूर था उसकी यात्रा के लिए निकलते थे। इन विश्वसनीय संदेशों ने 4 दिन और रात नाव से अमेजन नदी और सहायक नदियों की यात्रा की क्योंकि वहां सड़क नहीं थी। जल की इस यात्रा के बाद उन्होंने अगले 3 दिन भीड़ से भरी बसों से ऊपर खाड़मार्गों की यात्रा की। उनके पास बहुत कम भोजन और सोने का कोई उचित स्थान नहीं था। 7 दिन और रात के बाद वो साओ पाउलो मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने अनंत प्रकृति की धर्म विधियों को संपन्न किया। उनकी वापसी की यात्रा उतनी भी कष्ट भरी थी, फिर भी उन्होंने मंदिरों की धर्म विधियों और आशीषों को पाया। यदि भी उन्हें जेबें खाली थी, लेकिन वे स्वयं मंदिर की आत्मा और उन्हें मिली आशीषों की कृतज्ञता से भरे हुए थे। उनके दिल में मंदिर की आत्मा थी। अब कई सालों के बाद नहीं, मनास के सदस्य अब आनंदित होते हैं जैसे रियो की नदी किनारे मंदिर उन्होंने बनाए देखते हैं। मंदिर जहां भी मनाए जाते हैं हमारे सदस्य को जीवन में आनंद लाते हैं। परमेश्वर के मंदिर में पाए जाने वाले शिष्यों को प्राप्त करने के लिए कई बलिदान के किस्से मेरे हृदय को स्पर्श करने में कभी भी असफल नहीं होते हैं, और ये मंदिर के प्रति हमें कृतज्ञता की नव संवेदना देते हैं। इसी तरह की अन्य विवरण की तीही और तारना, तरेना, थाम और उनके 10 बच्चे शामिल हैं। उनके परिवार, पूरा परिवार 1961 में गिरजा में शामिल हुआ, और प्रचारक उन्होंने इनके द्वीप जो कि तहिती के दक्षिण में 240 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जल्द ही मंदिर के अनंत परिवार के रूप में मुहरबंदी के आशीषों को पाने की इच्छा करने लगे। उस समय माओ थाम परिवार के लिए निकटतम मंदिर दक्षिण चम में 5600 किलोमीटर दूर हैमिल्टन न्यूजील में था, जहाँ केवल महंगी हवाई यात्रा करके ही जा सकता था। इसके बाद माओ थाम परिवार जो कि एक छोटे से खेत में तंगाली से गरीबों में गुजारा कर रहा था, के पास हवाई यात्रा का खर्च आने के लिए बिल्कुल भी धन नहीं था।
On their Pacific island, so brother.
ना ही उन द्वीप पर रोजगार पे कोई मौका था। भाई माओ थाम और उनकी बेटी, जबकि 4,800 किलोमीटर पश्चिम में न्यू कैलेडोनिया की निकल की खदानों में काम करता था, के पास रहने का कठिन निर्णय लिया। खदान का मालिक अपने कर्मचारियों को खदानों तक आने का खर्चा देता था, लेकिन घर वापस जाने के लिए कोई खर्चा नहीं देता। 3 माओ थाम पुरुषों के 4 साल तक निकल की खदानों में खुदाई और भारी अयस्क को लाने का काम किया। भाई थाम अपनी बेटों को निकोले देना छोड़कर साल में एक बार कुछ समय के लिए घर आता था। चार साल तक कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भाई थाम और उनके बेटों ने न्यूजीलैंड मंदिर जाने के लिए पर्याप्त धन बचा लिया। सिर्फ एक बेटी को छोड़कर पूरा परिवार मंदिर गया था। वे समय और अनंतता के लिए मुहर बंद हुए थे। ये एक अवर्णन योग और आनंददायक अनुभव था। वे मंदिर में 2 हफ्ते तक रहे थे। जब उन्होंने पूर्वजों के पक्ष में सेवा की थी, ब्रदर माओ थाम मंदिर से सीधे वापस न्यूकॉलिडन गए था, जहां उन्होंने 2 साल तक काम किए ताकि वो अपनी बेटी और उनका पति और बच्चा उनके साथ मंदिर जो नहीं जा पाए थे उनकी यात्रा के लिए खर्चा के लिए पैसा जमा कर सकें। उनके बाद के सालों में भाई और बहन माओ थाम के बीच में जीवन की कई इच्छा व्यक्त की गई। उस समय तक पीपीटी तहिती मंदिर पूरा बनकर समर्पित हो चुका था, और भाई और बहन माओ थाम ने कई 2 मिशन पूरे किए थे। मेरे भाई और बहनों ने मंदिर पत्थर और गाड़े से कई अधिक है। ये लोगों के विश्वास और उपवास से भरे हैं। इन्हें परीक्षाओं और गवाहियों से बनाया जाता है। ये बलिदान और सेवा द्वारा पवित्र किए जाते हैं।
The first temple to be built in this district.
इस प्रबंध में सर्वप्रथम बनाए जाने वाले मंदिर कर्टलैंड ओहायो का था। प्रभु ने संतोष को संगठित होने, जरूरत की प्रत्येक वस्तु बनाने तैयार करने और घर, प्रार्थना का घर, उपवास का घर, विश्वास का घर, और किम्बल हिबर्सी किम्बल ने कहा कि भगवान मंदिर बनाना जाना चाहते थे, इसलिए हमें ऐसा करना है। एल्डर हिबर्सी किम्बल ने सिखाया था, इसे पूर्ण के लिए गरीबी, तकलीफों और कष्ट के लिए जिन्हें परिस्थिति से हम गुजरे थे उन्हें केवल प्रभु जानता है। उन्होंने अपनी बस्ती का नाम नाबू रखा। उन्होंने सपना सब कुछ दे दिया और उसकी संपूर्ण विश्वाख्या उन्होंने अपने परमेश्वर के द्वारा मंदिर खड़ा करना शुरू किया।
They erected another temple to their god.
उन्होंने उनके खिलाफ अत्याचार बढ़ा और नव मंदिर बनने से पहले ही उनके पास एक बार उनके घरों को से खदेड़ा गया। उन्हें जैसे उजाड़ स्थान पर कोई नहीं जाना जा सकता था। एक बार सिर्फ संघर्ष बलिदान शुरू हुआ जब उन्होंने उस मंदिर के बनाने के लिए 40 साल तक कड़ी मेहनत की, जो सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस सेंटर के दक्षिण में शान से खड़ा है। कुछ श्रेणी के बलिदान मंदिर निर्माण और मंदिर उपस्थिति से हमेशा हम जुड़े रहे हैं। अनगिनत लोगों ने अपने स्वयं की और अपने परिवार के लिए आशीषों को पाने के लिए मेहनत और संघर्ष किया है, जो परमेश्वर के मंदिरों में मिलती है। ऐसा क्यों है? क्यों इतने लोग मंदिर के आशीषों को पाने के लिए इतना कुछ देने के इच्छुक रहते हैं? जो मंदिर से मिलने वाले अनंत आशीषों को समझते हैं, वो जानते हैं कि आशीष को पाने के लिए कोई बलिदान इतना बड़ा नहीं है, कोई भी कीमत अधिक नहीं है, कोई भी संघर्ष अधिक नहीं है, कठिन नहीं है। वे कोई भी दूरी तय कर सकते हैं, कोई भी बाधा पार कर सकते हैं, ये किसी भी हद तक असुविधा सह सकते हैं। वे समझते हैं कि मंदिर में जो अनुबंध हम बनाते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, केवल उनके द्वारा ही हम यहाँ और वहाँ की वास्तव में खुश हो पाएंगे।
Our Heavenly Father in an eternal family relationship.
बचाने वाले धर्मविद्यों जो मंदिर में मिलती हैं, उनके पास हम अपने स्वर्ग पिता के पास जाके अनंत परिवार से जुड़ सकते हैं और स्वर्ग से हम आशीषों और शक्ति को दान पाते हैं। आज हम से अधिकतर लोगों को मंदिर जाने के लिए अधिक कष्ट नहीं सहना पड़ता है। गिरजाघर की 80% सदस्य मंदिर से 300 किलोमीटर के भीतर रहते हैं और बहुत के लिए ये दूरी और भी कम है। अवश्य ही कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जिन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक लंबी यात्रा करनी पड़ती है और अधिक व्यक्तिगत बलिदान देना पड़ता है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था, सभी सदस्यों के लिए मंदिर को निकट होने की हम आशा करते हैं। यदि आप स्वयं के लिए मंदिर जा चुके हैं, जैसे हम जो आप बलिदान के लिए आप जाप कर सकते हैं, वो ये उस व्यस्त जीवन निकाल कर निरंतर रूप से मंदिर का जान है। प्रेसिडेंट जोसेफ स्मिथ ने कहा है, उनके पक्ष में हमारे प्रयासों के द्वारा बंधनों की जंजीर उनके अलग हो जाएगी और उन्हें चारों ओर अंधकार मिट जाएगा, ताकि प्रकाश उनके ऊपर चमके और वे आत्मिक संसार में उस कार्य के बारे में सुने जो उनके बच्चों द्वारा उनके लिए यहाँ किया गया है और उनके कर्तव्यों के प्रदर्शन से अपने साथ आनंदित हों। मेरे भाइयों और बहनों, ये काम हमें करना है। मेरे स्वयं के परिवार में हमारे अधिकतम पवित्र और कीमती अनुभव में से वे समय है जब मंदिर में अपनी मृतक पूर्वज की मोर बंदे की धर्म विधियों की करके एक साथ जुड़े थे। यदि आप अभी तक मंदिर नहीं गए हैं, यदि आप गए हैं लेकिन वर्तमान में संस्कृति के योग्य नहीं है, कोई भी लक्ष्य आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिनका मंदिर हो जाने के लिए योग्य होना और वहां जाना आपका बलिदान हो सकता है, आपके जीवन को संस्कृति पाने की जरूरत को पूरा कर सकता है। आपको शायद पुरानी आदतों को त्याग करना पड़े जो आपके अयोग्य बनती हैं। यह आपका दशांश मंच देने के लिए जरूरी विश्वास अनुशासन का हो सकता है। ये चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर के मंदिर जाने के योग्य बने, मंदिर संस्कृतियों को पाए और उनके लिए एक बेशकीमती संपत्ति के रूप में अदा करें, क्योंकि ये बेशकीमती संपत्ति ही है। जब तक आपने भगवान के घर में प्रवेश नहीं किया है, आप उन आशीषों को नहीं पा सकते हैं जो आपका वहां का इंतजार कर रहे हैं। आपने उन सबको प्राप्त नहीं किया है जो वह गिरजाघर आपको दे सकता है। इस गिरजाघर में सदस्य की सबसे महत्वपूर्ण और उच्चतम आशीषें वो आशीष हैं जो हम परमेश्वर के मंदिर में ही प्राप्त कर सकते हैं। अब मेरे युवा मित्रों, जो एक इस अपनी किशोर अवस्था में हैं, आपका लक्ष्य होना हमेशा मंदिर जाने के लिए होना चाहिए। कुछ भी ऐसा ना करें जो आपको इस चीज की चौकट पर पांव रखने और पवित्र अनंत आशीषों में भाग लेने के लिए योग्य बनाए। मैं उनकी सराहना करता हूं जो मृत्यु की बपतिस्मे के लिए नियतमक रूप से मंदिर जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं ताकि विद्यालय शुरू होने से पहले इस प्रकार के बपतिस्मे भाग ले सकें। मैं दिन की शुरुआत करने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं सोच सकता।
To you parents of young children,
युवा बच्चों के माता पिता से मैं अध्यक्ष स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल की अकलमंद सलाह बांटना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, ये बहुत ही अच्छा होगा यदि माता पिता अपने घर के हर सोने के कमरे में मंदिर की तस्वीर लगा दें, ताकि उनके बच्चे अपने बचपन से उस तस्वीर को हर रोज देखें, तब तक उनके जीवन का हिस्सा वो न बन जाए। जब वे उस आयु में पहुंचेंगे जब उस मंदिर में आने से संबंधित उससे बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत होती है, ये पहले ही लिया जा चुका होगा। हमारे बच्चे प्राथमिक में गाते हैं, प्राइमरी में गाते हैं। मैं मंदिर को देखना चाहता हूँ। मैं एक दिन मंदिर में अंदर जाना चाहूंगा। मैं अपने पिता के संग अनुबंध करूंगा। मैं आज्ञाकार होने का वादा करूंगा। अपने बच्चों को मंदिर के महत्व को सिखाने में मैं आपसे विनती करता हूँ। मंदिर शांति का स्थान है। ये दया और प्रेम का और प्रकाश का स्थान है। जैसे हम भगवान के पवित्र घर जाते हैं, हम उन नियमों को सुनते हैं जिन्होंने वादे हमने भगवान के साथ में करे हैं और प्रलोभन से बच पाते हैं। इस पवित्र शरणागार में हमें शांति मिलेगी। हम नए और मजबूत किए जाएंगे। अब मेरे भाई और बहनों, मैं सवाब करने से पहले एक और मंदिर के विषय में कहना चाहूंगा। बहुत ही शीघ्र जब विश्व में हर जगह मंदिर बन रहे हैं, एक मंदिर ऐसे शहर में बनेगा जिसे स्थापित हुए 250 साल से अधिक हो गए हैं। मैं इस मंदिर के बारे में जोड़ रहा हूँ जो अभी रोम के शहर में बनाया जा रहा है। एक समान कार्य को करते हुए अपने समान आशीषों और धर्म विधि के बुलाते हैं प्रत्येक कर है। रोम का मंदिर एकमात्र ऐसे मंदिर है जो विश्व के महानतम ऐतिहासिक स्थानों में एक माना जाता है। एक ऐसा शहर जहाँ अतीत से प्रेरित पत्रस और पोलोस के मसीह ने सुसमाचार का प्रचार किया था और वे दोनों वहाँ शहीद हुए थे। पिछले अक्टूबर जब हम रोम के उत्तर पश्चिम में एक मनोहर ग्रामीण स्थान में एकत्रित हुए थे, समर्पण का प्रार्थना करने का मौका मुझे मिला था जब हमने जमीन खरीदने की तैयारी की थी। मैं प्रभावित हुआ था कि हमने रोम के उप मेयर जेसप शियार्डी और इटली के सेनेटर लुएसो मालान सबसे पहले जमीन पर फावड़ा चलाने के लिए कहा। हर कोई उनके शहर में मंदिर बनाने का निर्णय में एक हिस्सा रहा था।
मुझे
चाहता था कि वो जमीन को महसूस करें और वो मुस्कुराए। वो उस दिन बादल थे लेकिन मौसम गर्म था। यदि भी वर्षा के चेतावनी थे, केवल एक या दो बूंद गिरी थी। जब शानदार गायक मंडली ने इटालियन में द स्पिरिट ऑफ गॉड की सुंदर पंक्तियों को गाया, सबको ऐसा लगा स्वर्ग पृथ्वी मिलकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रशंसा और प्रतिज्ञा में स्तुति गति गा रहे थे। भावनाएं आंसुओं के रूप में प्रकट हुई थी। आने वाले दिन एक दिन विश्वासी इस अनंत शहर में परमेश्वर के पवित्र घर में एक अनंत प्रकृति की धर्म विद्या पाएंगे। मैं अपने स्वर्गीय पिता को रोम में बनाए जा रहे और अपने सभी मंदिर में जहाँ भी हुए हैं के लिए अपने अमित आभार प्रकट करता हूँ। ये सभी आकर्षक भवन हैं जो एक अनंत प्रकृति के लिए समर्पित किए गए हैं। हर एक मंदिर विश्व के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है. ये हमारी गवाही की अभिव्यक्ति है कि परमेश्वर द्वारा पिता जीवित है और वह हमें आशीष दीर्घायु देना चाहता है. अवश्य ही ये सभी पीढ़ी और उनके बच्चे और बेटियों को आशीष देना चाहता है. हमारे सभी मंदिर इस बात की अभिव्यक्ति है कि मृत्यु के बाद उनका जीवन उतना ही सत्य निश्चित है जितना हमारा जीवन यहाँ पृथ्वी पर सत्य निश्चित है.
I so testify.
मैं सभी को जो मुझे सुन सकते हैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं सबसे बड़ा बलिदान परमेश्वर के पुत्र मानव जाति के उद्धारकर्ता और मुक्तिकर्ता द्वारा दिया गया था. उसने हमारे पापों के लिए जीवन दे दिया. उस उपहार के कारण हम फिर से जीवन पाएंगे और उस उपहार के कारण हम मानव जीवन और उनके स्वर्ग पिता के राज में उत्कर्ष प्राप्त करेंगे. हर कोई इस महानतम आशीष योग बनने के लिए मेरी प्रार्थना है हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिकर्ता यीशु मसीह के नाम में.
This is my sincere prayer.
ये मेरी नरम दिल से प्रार्थना है. मैं इसे यीशु मसीह के नाम में समर्पित करता हूँ. यीशु मसीह. आमीन.